Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 19, text number 2. Tata sapatnam mukhatas. Charantam makuto bhayam. Chagnatoptya gadaya hanava asuram akshaja tata sapatanam muktasya charantam makuto bhayam. Chakna taptya gadaya anava asuram akshaja tata sapatanam muktash charantam makuto bhayam jagnato patya gadaya hannavah asuram akshajah tatah then sapatnam enemy mukhatah in front of him charantam stalking akutah bhayam fearlessly jaghana struck Utpatya, after springing up, Gadaya, with his mech, Hanau, at the chin, Asuram, the demon, Akshajaha, the Lord who was born from the nostril of Brahma. The Lord who had appeared from the nostril of Brahma sprang and aimed his mech at the chin of his enemy. The Hiranyaksha demon who was stalking fearlessly before him. Struck by the demon's mech, however, the Lord's mech slipped from his hand and looked splendid as it fell down whirling. This was miraculous, for the mech was blazing wonderfully. Even though the demon had an excellent opportunity to strike his unarmed foe without obstruction, he respected the law of a single combat. Thereby, kindling the fury of the Supreme Lord, as the Lord's mech fell to the ground and cry of alarm arose from witnessing crowd of gods and rishis. The personality of a godhead acknowledged the demon's love of righteousness and therefore invoked his Sudarshana discs. As the disc began to revolve in the Lord's hand, and the Lord contended at the close quarters with the chief of his Vaikuntha attendants, who had been born as a Hiranyaksha, a wild son of Diti, there issued from every direction strange expression uttered by those who were witnessing from airplanes. They had no knowledge of the Lord's reality and they cried, "May victory attain to you. Pray dispatch him. Play no more with him." When the demon saw the personality of a godhead who had eyes like a lotus petal, standing in a position before him, armed with his Sudarshan disc, his senses were overpowered by the indignation. He began to hiss like a serpent, and he bit his lip in a great resentment. The demon, who had fearful tusks, started at the personality of a Godhead as thou to burn him. Springing into the air, he aimed his make at the Lord, exclaiming at the same time, "You are slain. O saintly Vidura, while his enemy looked on, the Lord, in his boar form, the enjoyer of all sacrificial offerings, playfully knocked down the make with his left foot, even as it came upon him with the force of a tempest. The Lord then said, "Take up your weapon and try again. Eager as you are to conquer me," challenged in these words, the demon aimed his make at the Lord and once more loudly roared. When the Lord saw the make flying towards him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of birds, would seize a serpent. His valor thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. He was reluctant to take back the make when he was offered by the personality of a Godhead. He now took a trident which was as rapacious as a flaming fire and hurled it against the Lord, the enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy Brahmana. Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of a Godhead, however, tore it to pieces with his disc Sudarshan, which had a sharp edged ring, even as Indra cut off a wing of Garuda. Purport: the context of the reference given here regarding Garuda and Indra is this. Once upon a time, Garuda, the carrier of Lord, snatched away a nectar pot from the hands of the demigod in heaven in order to liberate his mother Vinada from the clutches of his stepmother Kadru, the mother of the serpent. On learning of this, Indra, the king of heaven, hurled his thunderbolt against the Garuda with a view to respect the infallibility of Indra's weapon. Garuda, though otherwise invincible, being the Lord's own mount, dropped one of his wings, which was shattered to pieces by the thunderbolt. The inhabitants of higher planets are so sensible that even in the process of fighting, they observe the preliminary rules and regulations of gentleness. In this case, Garuda wanted to show respect for Indra, since he knew that Indra's weapon must destroy something. He offered his wing. This is happen in higher planets, and the fight between Varaha and Hiranyaksha was happening in between the higher and lower planets. But both people, or both the residents, they were following the rules, the general rules of gentleness. That's the age of a Satyayuga. Kali Yuga, this is not going to happen. Kali Yuga, the people are the rulers of different countries. They are more and much interested in killing the mass of people together, innocent mass of people who are not doing any harm to them, but they try to kill them. Even the demons of Satyayuga, they followed the rules and regulations. And since the ages, they started progressing the rules of wars and gentleness gradually started depleting. And we can see in the Mahabharata itself. Actually, Mahabharata war was the start of an irreligious way of fighting. Kauravas, they put forward, they set examples for that. Like Ashwatthama, who being the son of a Brahmana, who knows all the course of conducts, but still he started fighting at night. And he killed the innocent sons of Pandavas. So that was the actual real beginning of cruelty towards the innocents during the fights. The other days, or all the 17 days of Mahabharata fight, whenever there is a sunset, they used to stop fighting. But after the 17th day, when Ashwatthama became a commander-in-chief of Kaurava army, he started all these irreligious activities. And in the age of Kali, we see that everything is happening topsy-turvy. Even demons of those era, they were properly cultured. Then further, Maitreya Rishi is explaining, the demon was enraged when his trident was cut to pieces by the disc of the personality of a Godhead. He therefore advanced toward the Lord and roaring aloud struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivatsa, when he went out of sight. Most important thing as explained here, from which you can understand what is the difference between the Lord's associate who has got the liberation as a Sarupya, like having the same form of a Lord. But there is always difference between that. And that difference is showed here by Srivatsa. Lord may come in any form, but he always has his significant signs on his chest, as explained here. That Lord, this demon, he struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Srivatsa. So nowadays the people in general, they worship any Tom, Dick, Harry as the Lord. But there are symptoms and signs they have given on the Lord's hand and Lord's feet and Lord's chest, through which you can understand whether that person is the incarnation of Lord or not. So when Lord appeared as a boar, still he had that mark of Srivatsa on his chest. The Purport Prabhupada says, the Srivatsa is a curl of a white hair on the chest of the Lord, which is a special sign of his being the Supreme Personality of a Godhead. In Vaikuntha Loka or in Golok Vrindavan, the inhabitants are exactly of the same form as the Personality of a Godhead. But by this, Srivatsa mark on the chest of the Lord, he is distinguished from the others. Even in Dwarka, there were two persons, they exactly resemble like the Lord. One is Uddhava, second is Hindi mein batao. पीछे बैठे आपके उनको पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है साम सत्यभामा का जो पुत्र था वो भगवान के जैसा ही दिखता लेकिन फर्क फर्क यही था कि उनके अक्षस्थल पे श्रीवत्स कौस्तुभ नहीं, श्रीवत्स का मार्ग था। फिर आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मैत्रेय ऋषि says that hit in this manner by the demon, O Vidura, the Lord who had appeared as the first boar, did not feel the least quacking in any part of his body, any more than an elephant would then struck with a wreath of flowers. I previously explained the demon was originally a servitor of the Lord in Vaikuntha, but somehow or other he failed as a demon. His fight with the Supreme Lord was meant for his liberation. The Lord enjoyed this striking on his transcendental body, just like a fully grown-up father fighting with a child. Sometimes a father takes pleasure in having a mock fight with his small child. And similarly, the Lord felt Hiranyaksha striking on his body to be like a flowers offered for worship. In other words, the Lord desired to fight in order to enjoy his transcendental bliss. Therefore, he enjoyed the attack. Like yesterday, we were discussing from the prayers of Prahlad Maharaj, where he says, why Lord appears to this world? संडे क्लास बाहर के लोगों के लिए रहता है, हमें जरूरत नहीं रहती क्लास में बैठने की या सुनने की। प्रहलाद महाराज सेज लॉर्ड अपीयर्स टू दिस वर्ल्ड फॉर टू रीजंस। वन इज आत्म सुख, to get pleasure. Even though he is Atmaram, but still he desires to get pleasure. And in the beginning itself, before these sons, they appeared or took birth in this planet, Lord has explained that he wanted to have a fight. He wanted to enjoy the fighting spirit. So he's made arrangement that this doorkeepers can come to this world. A second reason that Prahlad Maharaj says that to improve the universal development, Lord comes and takes different form in this material world. So here, the demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of a Godhead, who is the Lord of Yogamaya. At the sight of his people were filled with alarm and doubt that the dissolution of the universe was near. As explained in the previous verse, that Lord was enjoying it, and Prabhupada explains in the purport, like sometimes father plays around with his son and does a mock fighting. That does not mean that father is very weak, that he is not able to defeat his son. But father enjoys to make son happy and make him victorious. So here also, Lord is taking pleasure fighting with Hiranyaksha. And Hiranyaksha also, with his mystic power, he started applying different tricks and he started fighting with the Lord. And the other demigods who are gathered around, who are always confused to understand the pastimes of the Lord, they started thinking now there is a dissolution of this universe because this demon has becoming more powerful than the Lord. The fighting enjoyment of the Supreme Lord with his devotee, who had been converted into a demon, appeared severe enough to bring about dissolution of the universe. This is the greatness of the Supreme Personality of a Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous moment in the eyes of the inhabitants of the universe. Fierce winds began to blow from all directions, spreading darkness, occasioned by dust and hailstorms. Stones came in volleys from every corner, as if thrown by machine guns. Kshepanaihi pratitaiva. Machine guns, kshepani. The luminaries in outer space disappeared due to the skies being overcasted with the masses of clouds, which were accompanied by lightning and thunder. The sky rained pus, hair, blood, stool, urine, bones. Can you imagine? These things are coming from the sky. O sinless Vidura, mountains discharge weapons of various kinds. And naked demoness, armed with the tridents, appeared with their hair hanging loose. So what the symptom? Demoness, one thing they are naked, and second thing they have loose hairs. Nowadays, so-called well-educated, well-advanced people, they take pleasure in remaining naked and keeping loose their hairs. Cruel savages' slogans were uttered by the host of ruffian yakshas and rakshasas, who all either marched on foot or rode on horses, elephants and chariots. The Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, now discharged his beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. Even famous yogis and demons can sometimes enact very magical feats. Me 22 asta. 22 is a purport. Even famous yogis and demons can sometimes enact very magical feats by their mystic power. But in the presence of the Sudarshan Chakra, when it is let loose by the Lord, all such a magical jugglery is dispersed. The instance of the quarrel between Durvasa Muni and Maharaj Ambarish is a practical example in this matter. Durvasa Muni wanted to display many magical wonders, but when the Sudarshan Chakra appeared, Durvasa himself was afraid and fled to various planets. to various planets for his personal protection. The Lord is described here as a tripath, which means that he is the enjoyer of three kinds of sacrifices. In Bhagavad Gita, the Lord confirms that he is the beneficiary and enjoyer of all sacrifices, penances and austerities. The Lord is the enjoyer of three kinds of yajna. As further described in the Bhagavad Gita, there are sacrifices of goods, sacrifices of meditation, and sacrifices of philosophical speculation. Those on the path of jnana, yoga and karma all have to come in the end to the Supreme Lord, because Vasudevam Sarvamiti, the Supreme Lord is the ultimate enjoyer of everything. That is the perfection of all sacrifices. How you can understand what Prabhupada wants to say in this purport? But how is this related with this translation of this verse? कहाँ लिखा है? क्या तीन लोग
भगवान त्रिपति कृपा कृपा
उसका अर्थ क्या दिया है ट्रांसलेशन में? यानी अर्थ क्या है उसका? तीन यज्ञों के अधिपति, ये एक शब्द को समझाने के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि तीन प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं। जो कर्म ज्ञान और योग के द्वारा लोग भगवान को जानना चाहते हैं तो वे कई चीजों का त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस यानी त्याग भी है, तो उस त्याग को भी यज्ञ ही समझा गया है क्योंकि उसके द्वारा वे अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ही सारे यज्ञों के भोक्ता है। यज्ञपतिर श्रियापतिर ध्यापतिर, द्वितीय स्कंद में प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में यह श्लोक आता है। यहाँ पे भगवान किस प्रकार से इस भौतिक जगत के जितने भी नियंत्रक है उनके वे कैसे स्वामी है, जितनी भी अलग अलग विधियाँ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति भौतिक संपन्नता को प्राप्त करता है उनके वे अधिपति है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे भी जब ये अपनी योगिक शक्ति के द्वारा, असुरों के पास भी सिद्धियां रहती हैं, योगिक शक्ति रहती है, उसने एक ऐसा वातावरण निर्माण किया वहां पे कि ऐसे लगा भी अंत ही होने वाला है, पूरी सृष्टि का संहार होने वाला। और क्या किया था उसने? अचानक से बादल इकट्ठे हो गए, बिजलियां कड़कने लगी, हाँ, अर्धनग्न अवस्था में बालों को अपने गले में छोड़ते हुए कई राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेके गंदे शब्दों का उच्चारण करते हुए आ गए। ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है कि इस प्रकार की चीजें हो, किंतु ये उस असुर का, उस दैत्य का माया जाल था जिसमें यक्ष राक्षस ये भी अलग अलग भद्दे शब्दों का उच्चारण करते हुए टूट पड़े। तो ऐसे प्रतीत होने लगा देवताओं की अभी सारा सृष्टि का संहार ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं भगवान जो कि सारे यज्ञों के अधिष्ठाता है और भोक्ता है, केवल वे ही इन सारी घटनाओं से आकस्मिक प्रसंगों से जीव मात्र को बचा सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया फिर? जाग रहे ना, अपना सुदर्शन छोड़ दिया। यही सुदर्शन की महत्ता है। किसी भी प्रकार का माया जाल हो या किसी ने कुछ किया हो, उसको कौन मिटा सकता है? सुदर्शन महाज्वाला, सूर्य कोटि सम प्रभा। कोटि सूर्यों के जैसे जिनकी प्रभा है, ऐसे सुदर्शन ही सारे माया जालों से भक्तों को मुक्त कर सकता है। अज्ञान तिमिर अंधाना, जो अज्ञान के रात्रि में अंध हो चुके हैं, वैकुंठाब्द प्रदर्शक, वो वैकुंठ का मार्ग दिखाता है। तो इस राक्षस की माया जाल को नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने मुख्य आयुध सुदर्शन का प्रयोग किया। और फिर हुआ क्या उससे? At the very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Aditi, the mother of Hiranyaksha. She recalled the words of her husband, Kashyapa. The blood flowed from her. Press. At the Hiranyaksha's last moment, his mother, Aditi, remembered what her husband had said. Although her sons would be demons, they would have the advantage of being killed by the personality of a godhead himself. She remembered this incident by the grace of the Lord, and her breast flowed blood instead of a milk. In many instances, we find that when a mother is moved by the affection for her son, milk flows from her breast. In the case of demon's mother, the blood could not transform into milk, but it flowed down her breast as it was. Blood transforms into milk. To drink milk is auspicious, but to drink blood is inauspicious. Although they are one and the same thing, this formula is applicable in the case of cow's milk also. Vegan. People, they claim that we are vegan, we don't drink even cow milk. Why? Because it's animal product. Everything in this world then is animal product only. Nothing comes out without the help of animal products. Whatever you make raw. They eat this mushroom. From where it comes actually? What's the root of mushroom? From where it comes? You know? Huh?
It's it comes from the earth, but it's alive. It's categorized as an animal also.
इसलिए उसको कुकर मुत्ता कहते हैं।
वो तो दूसरा चावल है चावल।
हाँ?
मशरूम
की बात कर रहा हूँ। मसूर नहीं, मशरूम। यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जब माता को अपने पुत्रों से प्यार रहता है, प्रेम रहता है, तो बच्चों को देखने के पश्चात ही उनके स्तनों में दूध आना शुरू हो जाता है। और भगवान के बाल लीलाओं में कई बार इसका वर्णन आता है, जैसे दामोदर लीला में माता यशोदा उनके पीछे जब भाग रही थी, क्रोध भी था और प्रेम भी था, उनके स्तनों में से दूध गिर रहा था। जब भगवान हर रोज शाम को वन से वृंदावन में प्रवेश करते थे, तो अपने लाला को देखने के पश्चात उनके वक्षस्थल से दूध निकलना, केवल माता यशोदा ही नहीं बल्कि बाकी जो माता तुल्य माता माता सदृश जो गोपियां थी उनके स्तनों में से दूध बहना शुरू हो गया। केवल माताओं का यही हाल नहीं था बल्कि गायों का भी वही हाल होता था। जब वे देखती थी कि अपने बछड़े कृष्ण के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे तो उनके जो स्तन थे उसमें से भी दूध बहना शुरू हो गया। तो ये प्रेम का प्रतीक है। लेकिन यहां पे बताते हैं कि जब वो सुदर्शन छोड़ दिया भगवान ने, सुदर्शन छोड़ते ही हिरण्याक्ष का जो माया जाल था वो तो खत्म हो ही गया, लेकिन साथ में ही यहां दीति के हृदय में बहुत बड़ा प्रहार हो गया और वो एकदम शोकाकुल हो गई। और शोकाकुल माने स्थिति में अपने पुत्र का नाश समय विनाश होने का समय समीप आ गया ये जानकर उसके स्तनों में से दूध की बजाय रक्त बहने लगा। शोकात कहते हैं यहां पे कि शरीर का रक्त ही है जो दूध में परिवर्तित हो जाता है, है तो दोनों चीज सेम ही लेकिन अंदर बहुत है। जब गाय प्रेम बहुत प्रेम भाव से दूध देती है या उसमें जब प्रेम रहता है तो बछड़ा हो या ना हो वो दूध देती है। मैंने ऐसी एक गाय देखी है वृंदावन में है, एक प्रभुपाद के शिष्य है उनके पास, यमुना नाम है उसका, बहुत सुंदर है। पिछले 10-15 साल से ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि उसने दूध नहीं दिया चाहे बच्चा हो या ना हो। वो इतना प्रेम करते उस गाय से। एक हमारे स्वामी जी थे न्यू वृंदावन में, उनके बारे में ही कहा जाता था कि जब वे जाके गाय के मस्तक पे हाथ रख देते थे गाय का दूध बहना शुरू हो जाता था। इतना प्रेम था गाय को उनके प्रति और उनको गाय के प्रति। और आजकल हम देखते हैं कई माताओं को दूध ही नहीं आता है। उसका कारण कोई मेडिकल रीजन नहीं है, कारण है प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी। ये सारी नैसर्गिक चीजें हैं, इनको हमें समझना। श्रीमद् भागवत केवल परमोच्च भक्ति के बारे में भी नहीं बताता। जैसे यहां पे देखते हैं कि जनरल रूल्स जो है युद्ध के वे भी इसमें बताए गए हैं। कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताता है। और साथ ही साथ परमोच्च जो भक्ति है उसे कैसे प्राप्त कर सकते उसका भी बताया गया है। तो जैसे चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि वेदों को कल्पतरु कहा जाता है, वे वही आपको प्रदान करते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। आपको भौतिक संपन्नता यह चाहिए तो वेदों में उसी के बारे में आप पढ़ोगे तो केवल उसी के बारे में ही आपको मालूम पड़ेगा, भक्ति के बारे में आप जान ही नहीं पाओगे। और आपको भक्ति चाहिए तो वही वेद है जो आपको जीवन का सर्वस्व केवल भक्ति बताएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ईशोपनिषद में तात्पर्य में कि यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए। चाहिए ज्ञान चाहिए या इस भौतिक जगत की सम्मान प्रतिष्ठा ये चाहिए, यह आपको डिसाइड करना है। और इन्हीं सारे उपाख्यानों से यही मालूम होता है जब भक्ति चाहिए तो प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति विचार करना शुरू कर देता है कि हमें भगवान मैंने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखा है कि जो देवताओं के ऊपर अपना आधिपत्य रखता था देवता भी उसके इच्छा अनुरूप कार्य करते थे। जो अन्य लोग देवताओं की उपासना करके अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते उन सिद्धियों को देने वाले देवता भी उसके घर पे काम करते थे। इतना बलशाली व्यक्ति होने के पश्चात भी आपके काल के रूप ने तो उसको नष्ट कर दिया, तो फिर इस भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? वो तो नश्वर है। कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली संपन्न ऐश्वर्य संपन्न क्यों ना हो, साथ में कुछ आने वाला नहीं है। जब व्यक्ति की ये सोच हो जाती है तभी वो भक्ति करना शुरू कर लेता है, नहीं तो फिर भक्ति का अवडंबर करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुकर एर विष्ठा। शुकर तो विष्ठा खाता है, घृणित चीज है, लेकिन उसकी विष्ठा क्या होगी फिर, उससे भी ज्यादा घृणा प्राप्त करने वाली। लेकिन उसकी तुलना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा से। क्या कहना चाहते हैं? टीका है या प्रश्न है, क्या कहना चाहते हैं?
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भी हमारे साथ भी हो जाता है, जीव के साथ भी, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, लेकिन इच्छा भी नहीं है, भौतिक सुख भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है, तो हम लोग उसके बीच में, तो हम लोग दोनों साथ में भी
दो घोड़ों के ऊपर टांग रख के नहीं दौड़ सकते, कितना दौड़ोगे? किसी एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, या तो फिर भोग को प्राप्त करो या भगवान को, दोनों नहीं मिलेगा। अमृत छाड़िया मांगे कदर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई मेरे पास आके अमृत छोड़ के अगर जहर मांगने लगा या विष मांगने लगा तो मैं उसको दूंगा। नहीं मिल सकता, फिर वही दे देते हैं भगवान आपको, चलो ठीक है तुम्हें यही चाहिए ना, ये ले लो, इसके साथ ही है नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर इसके साथ ये दूंगा तो ये नहीं कर पाएगा। भौतिक संपन्नता आदमी को भ्रमित और भटका देती है मार्ग से, इसलिए तो भगवान उनके ऊपर आश्रय करते तो उनका पहले धन छीन लेते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो व्यक्ति को गुमराह कर देती है, भटका देती है अपने मार्ग से। ध्रुव महाराज की बात अलग थी, अपने क्षात्र गुणों के अनुसार ही जा रहे थे वे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे, वर्णाश्रम दिए हुए माता के सूचनाओं का, अपने गुरु के शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन कर रहे थे, और वो पालन इतनी प्रखरता से उन्होंने किया कि जो क्षत्रिय उचित था, शरीर को इतना पीड़े देना के पश्चात अपने आप को इन्होंने इतना शुद्ध बनाया कि उसी स्थिति में हृदय में स्थित भगवान को वो देख रहे थे। भगवान को भी अचंभा हो गया कि अभी इसको मुझे, इसको तपस्या से बाहर निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए अंदर से ही गायब हो गया। तो ध्रुव महाराज चमक गया, बोले गए कहां, अभी तो देख रहा था मैं इनको, और फिर सामने प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान को देखा उनको यह साक्षात्कार हो गया कि मैं जो मांग रहा था वो मूर्खता है। ऐसा नहीं कि वो पाने के बाद उनको साक्षात्कार हुआ, वो तो पाने से पहले ही हुआ, भगवान ने बोला कि बालक मांग जो मांगना है अभी। तो ध्रुव महाराज बोले स्थाना अभिलाषी तपस्थितो त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्न स्वामीन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। हाँ मैं जानता हूं कि मैं भौतिक इच्छा से ही आपकी भक्ति कर रहा था, लेकिन जब मैंने आपको साक्षात देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं कांच के टुकड़े के लिए प्रयास कर रहा हूं, हालांकि हीरा मेरे हाथ में। ये तो पहले ही उनको रियलाइज हो गया, बोले चाहिए ही नहीं मुझे, स्वामी कृता तो अस्मि वरम न याचे, नहीं चाहिए मुझे आपके वरदान अभी, मैं कृतकृत्य हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया। फिर भी भगवान बोलते हैं अभी आया हो तो दे ही जाता हूं, ले ही लो। भक्ति का बाय प्रोडक्ट करके उनको मिला, मेन प्रोडक्ट नहीं था, मेन प्रोडक्ट तो भक्ति मिल गया। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारती तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुष। चाहे आपके वैराग्य की भावना हो या भोग करने की हो, ये न किए न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश है। जब लगाना शुरू कर देते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि भैया मन में भौतिक इच्छा रख के मन भगवान में नहीं लग सकता, लगेगा। लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में सुनते जाओगे तो हृदय साफ होते जाएगा। अगेन पुनः यह आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप कितनी गंभीरता से उसको समय देते, कितनी गंभीरता से उन सारी बातों का श्रवण करते हो, क्योंकि श्रवण ही एकमात्र भक्ति है जो आप किसी भी प्रकार के तपस्या से विरहित होकर कर सकते हो। कोई कष्ट नहीं है उसमें, ना कोई पैसा पे करना है, ना धन का आवश्यकता है वहां पे, बल्कि आवश्यकता है आपके गंभीरता की। नहीं तो फिर आरे एलो यार गेलो, महाप्रभु बोलते आया और गए। हरे कृष्ण। बाबा वो समझ में आया थोड़ा थोड़ा?
इसमें एक चीज तो आया है
क्या,
ये जो भगवान अवतार जो दिए थे अभी नाक से
रक्त भरा
अभी नेस्टल से आया, अभी बढ़वा पहले नहीं आया था ये चीज
ना, जब आवश्यकता हो तब बता देता।
अभी बीच में आ गया,
मैं वही सोच रहा था कि श्वेतवरा कल्प हम बोलते हैं, लेकिन ये पिछले कल्प का है जिसमें भगवान, क्योंकि ये दशा अवतार जो होते हैं ब्रह्मा के दिन में केवल एक बार ही होते हैं।
ब्रह्मा इतना वर्णन किया देवताओं का ऐसा ऐसा हुआ करके, लेकिन इन्होंने वहां ये वर्णन नहीं किया कि मेरे नाक से वो भगवान आए थे, नहीं किया ना।
अभी आएगा आगे, और आगे पूरी तरह से आएगा कि वो अंगुष्ठ के समान थे और देखते देखते इतने प्रचंड कैसे हो गए, उसका वर्णन आएगा। एक्चुअली पद्म पुराण में जो वराह अवतार का वर्णन है उसमें श्वेत वराह के बारे में बताया गया, भागवतम में रक्त वराह के बारे में बताया गया। क्योंकि ब्रह्मा के हर एक कल्प में भगवंत अवतार लेते तो थोड़ी भिन्नता रहती, जैसे पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए वृंदावन से मथुरा कंस को मारने के लिए वे कालिया के फन पे बैठ के चले गए। ये कल्पभेद की कथाएं हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि हर साल प्रतिवर्ष जब भगवान अश्वमेध यज्ञ किया करते थे तो एक सुवर्ण की सीता बनाते थे और उनको बाजू में रखे उसमें सीता जी का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर यज्ञ करते थे। पद्म पुराण में वर्णन है कि सीता जी गई नहीं जंगल, उनके साथ ही थी सारे के सारे यज्ञ माता सीता के साथ में। तो कल्पवेद के अनुसार थोड़ा थोड़ा लीलाओं में फर्क है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।